एहेस्केल अध्याय एक। हमारे इस अध्याय में हम एक ऐसे मनुष्य की भविष्यवाणियां पढ़ेंगे जो परमेश्वर के सामने बार बार मुंह के बल गिर पड़ता है। एहेस्केल ने कहा, एहेस्केल अध्याय एक पद एक, तीसरे वर्ष के चौथे महीने के पांचवें दिन अर्थात 5 जुलाई को। संभवतः यह एहेस्केल के जीवन काल का 30वां वर्ष था, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब उसकी आयु 30 वर्ष थी। एहेस्केल अध्याय एक पद एक में आगे लिखा है, मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। एहेस्केल और यहोयाकीम को दूसरे निर्वासन में बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया था। नबूकदनेज़र की सेना ने 3 बार यरूशलेम में प्रवेश किया था और 3ों बार यहूदा वासियों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया था। दानियल को प्रथम निर्वासन में बंदी बनाकर ले जाया गया था और एहेस्केल को दूसरे निर्वासन में बंदी बनाकर ले जाया गया था। एहेस्केल मुख्य रूप से बंधुओं में भविष्यवाणी करता था। इस समय तक यरूशलेम नगर नाश नहीं किया गया था। उन दिनों बाबुल में यहूदियों के बीच में झूठे भविष्यद्वक्ता भी थे जो लोगों से कहते थे वहां बसना उचित नहीं है, अतः बंधुओं को वहां मकान नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर शीघ्र ही बाबुल को पराजित करेगा और हम अपने देश लौट आएंगे। हम यहां कुछ समय के लिए ही है। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा और हम बाबुल से शीघ्र ही अपने देश लौट आएंगे, इसलिए मकान आदि बनाना ठीक नहीं है। यिर्मयाह ने उन्हें पत्र लिखकर कहता रहता था कि वे झूठे भविष्यत वक्ताओं की बातों पर विश्वास न करें जो उन्हें वहां बसने से मना करते हैं। वे वहां बस जाएं क्योंकि उन्हें वहां 70 वर्ष तक रहना होगा। उनमें से अधिकांश जन बाबुल में ही अपनी उम्र पूरी करेंगे, अतः वे वहां बस जाएं और परिस्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इस प्रकार वहां भविष्यद्वक्ताओं के 2 वर्ग थे, एक सच्चे भविष्यद्वक्ता और दूसरे झूठे भविष्यद्वक्ता। एहेस्केल परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं में से था और वो भी वही संदेश दे रहा था जो यिर्मयाह दे रहा था कि यरूशलेम वासियों का निकट भविष्य में पुनरुद्धार संभव नहीं है, वरन यरूशलेम का नाश होगा और उसके निवासी तितर बितर किए जाएंगे। यिर्मयाह यरूशलेम से लिखकर भेजता था और एहेस्केल उनके मध्य रहकर कहता था, परमेश्वर का वचन सुनो और यही बस जाओ, क्योंकि बंधुआई का समय लंबा होगा। एहेस्केल ने 596 ईसा पूर्व में यरूशलेम के पतन से पूर्व अपनी भविष्यवाणी आरंभ कर दी थी। उसे तो बाबुल ले जाया गया था, परंतु हम ये न सोचे कि उसके निर्वासन के साथ ही यरूशलेम का पतन हो गया था। बाबुल की सेना अभी एक बार और आक्रमण करेगी। वो आरंभ से ही यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी कर रहा था। यरूशलेम के विनाश के बाद उसकी भविष्यवाणियों में परिवर्तन आया और उसमें आशा की किरण फूटी। उसने कहा कि परमेश्वर अपने समय में इसराइल की महिमा को पुनर्स्थापित करेगा। उसने देखा कि पूर्वी द्वार से परमेश्वर की महिमा निकल गई। जब लोगों ने सुना कि यरूशलेम का विनाश हो गया, वे निराश हो गए, परंतु तब उसने उन्हें प्रोत्साहन देते हुए कहा, परमेश्वर फिर से अपनी प्रजा के हित में काम करेगा और परमेश्वर की महिमा फिर से आ जाएगी। परमेश्वर की महिमा उसके भवन में भर जाएगी और ये महिमा पहले से अधिक महान होगी। इसराइल ने अभी तक अपनी ऊंचाइयों को नहीं देखा था, अर्थात वो अपनी चरम सीमा तक अभी नहीं पहुंचा था। परमेश्वर यरूशलेम और इसराइल पर अपनी महिमा को ठहराएगा। कठिन समय तो आते और जाते रहेंगे, परंतु परमेश्वर अपने लोगों के हित में काम करके ही रहेगा। सच तो यह है कि भविष्य में एहेस्केल की भविष्यवाणियां हमारे युग से भी आगे निकल जाती है। एहेस्केल ने अपने देश का पुनरुद्धार का दर्शन देखा। उसने देखा कि उनके राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो रहा है। उसने आज के यरूशलेम के विकास अभियान की तथा इसराइल के आधुनिक पुनर्वास की भविष्यवाणी की थी। उसने ये भी कहा था कि इसराइल के पुनर्वास के बाद रूस उस पर आक्रमण करेगा। हम एहेस्केल की भविष्यवाणियों में रोचक और अद्भुत बातें देखते हैं, क्योंकि हम अपने ही समय में आने वाले समय को देखते हैं। हम आज का समय ही नहीं देखते हैं, परंतु आने वाले समय में एक वर्ष, दो वर्ष, पांच एवं दस वर्ष में होने वाली घटनाओं को देखते हैं। वो इससे भी आगे निकल जाता है। हम परमेश्वर के राज्य के युग की बातों को भी, जो इसराइल में होगी, यीशु मसीह के राज्य में देखेंगे कि वो आएगा तो नगर के पूर्वी द्वार से प्रवेश करेगा और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। एहेस्केल की भविष्यवाणी जब आरंभ होती है तब उसकी आयु लगभग 30 वर्ष थी। यशया ने परमेश्वर का दर्शन पाया था, परंतु एहेस्केल ने परमेश्वर के सिंहासन को देखा था। नए नियम में यूहन्ना ने भी दर्शन में परमेश्वर के सिंहासन को देखा था। इन तीनों की अंतर्दृष्टि से हमें परमेश्वर के सिंहासन और स्वर्गिक दृश्य की जानकारी मिलती है। पर यहां एक समस्या उत्पन्न होती है कि हम स्वर्गिक बातों का वर्णन मानवीय भाषा की सीमा में करेंगे। निस्संदेह हमारे पास स्वर्गिक बातों का वर्णन करने के लिए यथोचित शब्द नहीं है, परंतु अभी उन बातों को हमारे लिए शाब्दिक दृश्यों में ही रहना होगा। अतः यहां मानवीय भाषा का प्रयोग करते हुए उन चीजों का वर्णन करने का यथासंभव प्रयास किया गया है जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। विचित्र दिखने वाले प्राणी जिन्हें हमने स्वप्न में भी नहीं देखा, बुद्धिजीवी आदि का वर्णन मानवीय भाषा में करने का प्रयास किया गया है। यहां निश्चय शब्दों की कमी महसूस होती है। उदाहरण के लिए, यदि अचानक एक सहस्राब्दी के बाद के तकनीकी विकास को हम आज की भाषा में व्यक्त करें, कहने का अर्थ यह है कि आप वर्णन तो करना चाहते हैं परंतु आपके पास शब्द ही नहीं है। इसी तरह एहेस्केल के दर्शन को मानवीय दृष्टिकोण से देखने का ये प्रयास मात्र है। याद करें, जब यीशु मसीह निकोदिमस से मनुष्य के नए जन्म के बारे में बात कर रहा था, वो निकोदिमस को ऐसी बातें समझा रहा था जिन्हें वो नहीं समझता था। इसलिए निकोदिमस ने पूछा, मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे अपनी मां के गर्भ में प्रवेश कर सकता है कि नया जन्म ले? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे संसारिक बात करता हूं और तू उन्हें समझता ही नहीं है, तो यदि मैं स्वर्ग की बातें करूं तो तू उन्हें कैसे समझेगा? बाइबल कहती है कि कोई मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकता यदि आत्मा उसे प्रकट ना करे। यहां हम परमेश्वर की बातों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है कि हम इन बातों को समझें और ग्रहण करें कि उनकी झलक मात्र प्राप्त कर पाए। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि उसने जो देखा उसे हम भी स्वर्ग प्रवेश के बाद देखेंगे। अतः आपको इन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, यद्यपि अभी वे समझने में कठिन है, क्योंकि एक दिन हम उन्हें साक्षात देखेंगे और तब हम उनकी तुलना करेंगे तो कहेंगे उसने ठीक ही समझाया था, क्योंकि उसका वर्णन काफी कुछ ऐसा ही था। अतः यहां पांचवा वर्ष था जब यहोयाकीम बाबुल में बंदी बनाकर लाया गया था। इस समय सिदकया यरूशलेम में यहूदा का राजा था। यहोयाकीम ने केवल 3 माह राज्य किया था कि नबूकदनेस्सर ने आकर उसे, उसकी माता को, उसके परिवार को और अनेक यहूदियों को बंदी बनाया और उन्हें बाबुल ले गया। एहेस्केल अध्याय 1:3। यहोवा का वचन बूजी के पुत्र एहेस्केल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। एहेस्केल ने 7 बार इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया, परमेश्वर की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। ये पहली बार यहां प्रयोग हुआ, फिर अध्याय 3:14-22 में, पर इसके बाद अध्याय 8 तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है। एहेस्केल अध्याय 1:4। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा आ रही है। यहां उत्तर दिशा के अर्थ है परमेश्वर का निवास स्थान। यशया ने शैतान के घमंड के विषय में लिखा था कि उसने कहा, मैं उत्तर दिशा में उठूंगा। पृथ्वी के संबंध में ये माना जाता है कि परमेश्वर का राज्य उत्तर दिशा में है। कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में एक बड़ा रोचक लेख छापा गया था कि ब्रह्मांड में विशाल रिक्त स्थान पाया गया है जो ध्रुव तारे की दिशा में है। वैज्ञानिक इस खोज से उलझन में पड़ गए हैं। इस खोज से वैज्ञानिकों की परिकल्पनाओं को आघात पहुंचता है। ये महाविस्फोट के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि महाविस्फोट में मलवा चारों ओर बराबर मात्र में विसर्जित हुआ था और इसमें रिक्त स्थान की संभावना ही नहीं रहती है। परंतु हाल ही की इस खोज ने उन्हें उलझन में डाल दिया है। ये खगोल शास्त्रियों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, परंतु फिर भी वे इस खोज को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं में बैठाने के प्रयास में लगे हुए हैं। उसने उत्तर से आंधी आती देखी। उत्तर से उसका तात्पर्य बाबुल से नहीं है, क्योंकि वो स्वयं बाबुल में इस दर्शन को देख रहा था। एहेस्केल अध्याय 1:4 में आगे लिखा है, और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है। क्या आपने लहराती हुई आग देखी है? ऐसा तब होता है जब उच्च दाब पर ज्वलनशील पदार्थ जलते हैं और अग्नि ऊपर उठते समय आग का गोला बन जाती है। ये देखने लायक नजारा होता है। मैंने एक दिन तेल की फैक्ट्री में आग लगते हुए देखी। लोग आकर्षित होकर फैक्ट्री के निकट आ रहे थे। वहां एक धमाका हुआ और धमाके के साथ आग का एक गोला उठा। आग अपने आप में लिपटती हुई ऊपर उठी और ऊपर जाकर खुली। ये बड़ा ही विस्मयकारी दृश्य था। एहेस्केल ऐसी ही आग को उत्तर दिशा से आते देख रहा है और साथ ही एक बादल को भी। बाइबल में अनेक बार परमेश्वर को बादलों से घिरा दर्शाया गया है, महिमा के बादल जो परमेश्वर को घेरे रहते हैं। जब परमेश्वर मूसा से बात करने आया था, तब महिमा के बादल ने सीनाई पर्वत को घेर लिया था और वहां आग के गोले उठ रहे थे। एहेस्केल अध्याय 1:4 के अंत में लिखा है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। इस प्रकाशमान घटा और आग के गोले के बीचों बीच पीतल के से रंग के 4 प्राणी इसे दिखाई दिए। एहेस्केल अध्याय 1:5-7 तक। फिर उसके बीच से चार जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के चार चार मुख और चार चार पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तालुए बछड़ों के खुरों से थे और वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। फिर से वो उन प्राणियों के लिए जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था मानवीय भाषा का प्रयोग कर रहा है, इसलिए हमें उन प्राणियों की कल्पना करके अपने मस्तिष्क में उनका चित्र खींचना होगा। वे मनुष्य के से दिखाई देते थे, परंतु उनके चार चार मुख और चार चार पंख थे और उनके पैर गाय के खुर के से थे, परंतु वे झलकाए हुए पीतल के से दिखाई देते थे। एहेस्केल अध्याय 1 पद 8 और 9। उनकी चारों अलंग पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। ये प्राणी सीधे सीधे चलते थे। ये प्राणी वैसे ही हैं जैसे यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन के दर्शन में देखे थे। उनका विवरण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अध्याय 4 में है। एहेस्केल उन्हें फिर से अध्याय 10 में देखता है, जहां वो उन्हें पहचान लेता है और हम समझ पाते हैं कि वे करूब हैं जिनको परमेश्वर ने रचा था। वे बुद्धिजीवी हैं जो परमेश्वर के निकट ही रहते हैं और दिन रात कहते नहीं रुकते, पवित्र 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 सर्वशक्त परमेश्वर जो था, है और रहेगा। ये मूसा को दिए गए परमेश्वर के मंडप निर्माण के विवरण के अनुरूप दिखता है, जिसे इब्रानियों का लेखक स्वर्ग का प्रतिरूप कहता है। आपने अपने जीवन में कागज का हवाई जहाज या कार अवश्य बनाया होगा जो P-51 हवाई जहाज का नमूना है, जिसमें आप उड़ नहीं सकते, परंतु वो हवाई जहाज की तरह है। इसी प्रकार मंडप भी वास्तविक स्वर्गिक स्थान का प्रतिरूप था। वास्तविक तो स्वर्ग में है। मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि महापवित्र स्थान में वो इन करूबों को सोने का बनाकर अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर लगाएं। उनके पंख एक दूसरे से मिले हुए हो और उनके पंखों के सिरे 15 फुट के सोने की पेटी के कक्ष के सिरों को छूते हुए हो। ये स्वर्गिक दृश्य का प्रतिरूप था। अतः ये करूब थे जो जीवित तथा तीक्ष्ण बुद्धि के प्राणी थे। देखने में तो वे चार चार चेहरों और गाय के खुर के कारण विचित्र प्राणी से दिखाई देते हैं, परंतु वे परमेश्वर के सिंहासन के निकट उपस्थित रहने वाले प्राणी हैं। एहेस्केल अध्याय 1 पद 10। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दहनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे का मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चार चेहरों में से सामने का चेहरा मनुष्यों का सा, दहनी ओर का चेहरा शेर के समान, बाईं ओर का बैल के तथा पीछे उकाब के समान चेहरा था। जैसे मैंने कहा कि वे दानव के जैसे दिखते थे, कुछ लोग इन चार चेहरों की तुलना चार सुसमाचार वृत्तांतों में दी गई मसीह यीशु की उपमा से करते हैं। मती में मसीह यीशु को यहूदा का सिम, मरकुस में मसीह यीशु को सेवक अर्थात बैल, लूका में मसीह यीशु को मनुष्य का पुत्र और यूहन्ना में मसीह यीशु को ईश्वर अर्थात उकाब दर्शाया गया है। एहेस्केल अध्याय 1 पद 11 और 12। उनके चेहरे ऐसे थे और उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के दो दो पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और दो दो पंखों से उनका शरीर ढांपा हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। क्योंकि उनके चेहरे चारों दिशा में हैं, इसलिए उन्हें मुड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। एहेस्केल अध्याय 1 पद 13। और जीवधारियों के रूप अंगारे और जलते हुए पलीतों के समान दिखाई देते थे। अपनी अंगिटी के जलते हुए कोयलों की कल्पना कीजिए। एहेस्केल अध्याय 1 पद 13 और 14। और वो आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से जो बिजली निकलती थी और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। उनकी चलने की रफ्तार बिजली की सी थी, जैसे कि बिजली चमकी हो। एहेस्केल अध्याय 1 पद 15 और 16। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी। फिरोजी रंग कुछ हरासा होता है। एहेस्केल अध्याय 1 पद 16 में आगे लिखा है, और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो। देखिए, ये वर्णन मानवीय भाषा में है, इसलिए वो कहता है कि जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो। प्रकाश की चमक और उनके चलने से उत्पन्न ऊर्जा का रंग लहसुनिया ट्यूबलाइट के समान का सा था। एहेस्केल अध्याय 1 पद 17। चलते समय वे अपने चारों आलंगों की ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। वो तीसरी बार इसका उल्लेख करता है, अतः उसके लिए ये रोचक बात ही होगी, क्योंकि पृथ्वी पर उसने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा था। एहेस्केल अध्याय 1 पद 18 से लेकर 21 तक। और उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने विस्मयकारी थे, और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी, और जब जीवधारी चलते थे तब पहिये भी उनके साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर से उड़ते थे तब पहिये भी उड़ते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते, और पहिये जीवधारियों के साथ उड़ते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे, और जब जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे भूमि पर से उड़ते थे तब पहिये भी उनके साथ उड़ते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। वो फिर से दोहराता है। एहेस्केल अध्याय 1 पद 22। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल सा कुछ था जो बर्फ की नाई भयानक रीति से चमकता था, और वो उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर के सिंहासन के आसपास का वर्णन कर रहा है। ये प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के नीचे थे। ये कांच का सा दिखाई देता था। यूहन्ना ने भी कांच का सा समुद्र देखा था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में आप ठीक वैसा ही वर्णन देखते हैं जैसा एहेस्केल के दर्शन में है। दोनों ने ही स्वार्गिक दृश्य, सिंहासन तथा परमेश्वर की महिमा को देकर मानवीय भाषा में समझाने का प्रयास किया है। एहेस्केल अध्याय 1:23। और आकाश मंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे, और हर एक जीवधारी के दो दो और पंख थे जिनसे उनके शरीर ढपे हुए थे। दो पंखों से उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा था और दो से शरीर को ढांक रखा था। एहेस्केल अध्याय 1:24। और उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल की सी सुनाई पड़ती थी। क्या आप कभी नयगरा जलप्रपात के निकट गए हैं? वहां आपको बहुत से जल की आहट सुनाई देगी, जैसे कि गर्जन। अतः उनके चलने से गर्जन होती थी तथा बिजली चमकती थी, और वे सीधे सीधे चलते थे। एहेस्केल अध्याय 1:24 में आगे लिखा है, या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना का हलचल किसी सुनाई पड़ती थी। जब वे खड़े होते थे तब उनके पंख उनके बगल में नीचे तक पहुंचते थे। एहेस्केल अध्याय 1:25-28 तक। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे, और जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था, और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी, और उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। यदि आप दानियल की पुस्तक अध्याय 7, 9, 10 का व्यक्तिगत अध्ययन करें तो आपकी रुचि बढ़ेगी। वहां दानियल उस दर्शन का वर्णन करता है जो परमेश्वर ने उसे दिया था। यशया की पुस्तक अध्याय 6 के अध्ययन में भी आप देखेंगे कि वो परमेश्वर के सिंहासन के दर्शन का वर्णन करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में यूहन्ना अपने दर्शन का वर्णन करता है। इस प्रकार यदि आप इन चारों को एक साथ रखकर देखें तो आपको स्वर्ग के दृश्य का अनुमान हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में यूहन्ना कहता है कि उसने परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हरे रंग का पन्ना मरकत मणि जैसा धनुष देखा, जैसे यहेस्केल यहां वर्णन करता है। उसका अनुभव भी वैसा ही था, वो भी मुंह के बल गिर पड़ा। दानियल दर्शन पाकर बहुत थका हुआ प्रतीत कर रहा था। एहेस्केल मुंह के बल गिर गया और उसने कहने वाले की वाणी को सुना। एहेस्केल ने उड़न तश्तरी देखी, अर्थात अन्य ग्रहों के प्राणी पृथ्वी पर आए। उस युग में वे पृथ्वी पर आते रहते थे। वे इतिहास के उन अलौकिक कार्यों के उत्तरदायी थे जैसे प्राचीन मानव के कुछ विशाल निर्माण कार्य जिनसे मनुष्य आज भी चकित है। लोग आज भी रेगिस्तानी वो निर्जन स्थानों में जाकर इन वस्तुओं को देखते हैं। इन उड़न तश्तरियों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, चर्चा की जाती है और बहुत कुछ लिखा भी गया है। इन उड़न तश्तरियों के बारे में अनेक रिपोर्ट है कि इनके आने पर रोचक घटनाएं होती है। इनके बारे में अनेक बुद्धिजीवियों ने वर्णन किया है, अतः इनको स्वीकार ना करना कठिन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक लैम्बर्ट डॉल्फिन, जो खगोल भौतिक वैज्ञानिक थे, वो विशिष्ट एवं विद्वान व्यक्ति था। उन्हें एक बार उड़न तस्त्रियों पर होने वाले सम्मेलन में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस विषय के ऊपर उसने भाषण तैयार किया था, जिसके द्वारा वो उसको मनगढ़ंत या काल्पनिक ठहरा सके। इस सम्मेलन में 3,000 लोग उपस्थित थे। उसमें आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कुछ प्रोफेसर, वैज्ञानिक और समाज के विशिष्ट जन थे। सम्मेलन के अध्यक्ष ने वहां उपस्थित लोगों से पूछा, आप लोगों में से कितने लोगों ने उड़न तस्त्रियां देखी है? उन्हें ये देखकर अचंभा हुआ कि वहां उपस्थित 2/3 लोगों ने उसे देखा है। उसने पूछा, कितने लोगों ने उस पर यात्रा की है? फिर वहां उपस्थित 2/3 लोगों ने अपने हाथ उठाकर कहा, हां, हमने यात्रा की है। जो ही लैम्बर्ट भाषण देने खड़े हुए, उन्हें एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी जो उनके भाषण में विघ्न डाल रही थी। वो सोचने लगा, ये आवाज कहां से आ रही है? वो सभा के सदस्यों को देखने लगा कि वे जो इस आवाज के निकट होंगे मेरी ओर देखेंगे। तब वो वहां के कर्मियों से कहेंगे कि उसे देखें कि वो क्या है और उसका निवारण करें। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो आवाज केवल उन्हीं को सुनाई दे रही थी और किसी को नहीं। इस वैज्ञानिक को अकस्मात ही बोध हुआ कि ये शैतानी हरकत है। वो ऐसा दहल हिल गया कि उसने इस धारणा को निराधार सिद्ध करने का विचार त्याग दिया। मेरे लिए रोचक बात तो यह है कि ये लोग एहस्केल को अपने पक्ष में रखते हैं और कहते हैं कि वो भी तो इसी का उल्लेख करता है, परंतु वो किसका विवरण दे रहा है? जैसा मैं पहले कह चुका हूं, एहस्केल इसी दर्शन का उल्लेख फिर से 10 में करता है। वो हमें पहले कह चुका है कि वो क्या है। ये करूब है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहते हैं। उनमें पहिए से आकार है और वे बिजली की सी चमक निकालते हैं और सीधे सीधे चलते हैं। उड़न तस्त्रियां भी सीधी सीधी चलती है, वे पीछे मुड़ने के लिए घूमती नहीं। वे बहुत ही तेज रफ्तार से अपनी दिशा बदल सकती है। वे हवा में ही रुक जाती है और फिर अकस्मात ही बहुत तेजी से चल पड़ती है। अतः ये अति संभव है कि ये लोग, जिन्हें उड़न तस्त्रियों का अनुभव है, वे आत्मिक संसार में उलझते हैं और पतित करूब, प्रधान स्वर्गदूत अर्थात शैतान को देखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब शैतान का पतन हुआ था, तब उसके साथ 1/3 स्वर्गदूतों का भी पतन हुआ था। ये भी बड़े ध्यान देने की बात है कि बाइबल बताती है कि शैतान भी एक करूब, प्रधान स्वर्गदूत था और वो अभिषिक्त भी था जिसने छल किया। परंतु अन्य दूत भी है कि एक संभवतः हम मनोरंजक क्षेत्र के रहस्यों पर विचार कर रहे हैं। ऐसे स्वर्गदूत स्वयं को उन लोगों पर प्रकट करते हैं जो इन रहस्यों, जादू टोना में उलझे हुए हैं। एहस्केल ने जिन्हें देखा, वे परमेश्वर के सिंहासन के पास रहने वाले करूब, प्रधान स्वर्गदूत थे। पतित करूब का भी यही रूप और आकार है। अतः हम उड़न तस्त्रियों के विषय को निराधार नहीं कर सकते हैं। ये अति संभव है कि अंतिम दिनों में ये शैतानी शक्तियां अपने प्रदर्शन को बढ़ाती जाएंगी। जैसे नूह के दिनों में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। नूह के दिनों में शैतानी क्रियाकलाप की बहुतायत थी और आज हम प्रभावी शैतानी कार्य क्षेत्र में उपस्थित है। ये मेरा एक विचार है। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक दुर्बोध सत्य का अनावरण कर रहा हूं। ये केवल एक विचार का विषय है, इसलिए मैं इसे यही छोड़ देता हूं।